उसी पर चर्चा होगी। कल का प्रश्न था, जब तप ने क्या रखा है मरना सीखे, तो वो मरना कैसे होता है। तो इसी के इर्द गिर्द और भी प्रश्न है। ये दीपक ने पूछा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अंत में जैसी मति वैसी ही गति होती है आखिरी समय में है। तो इनका प्रश्न ये है कि क्या कोई साधक आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करते हुए मृत्यु नहीं आने पर भी, मृत्यु अभी समय नहीं आया था, अभी शरीर रहने लायक था, और तो ध्यान करते करते यदि वो शरीर छोड़ दे तो भी उसकी क्या मुक्ति हो जाएगी, जिसका भी मनोनाश वासना क्षय भी नहीं हुआ, ध्यान करते करते यदि कोई शरीर छोड़ दे। तो एक प्रश्न ये है। दूसरा ये अहमदाबाद से है, वरुण का प्रश्न। ये भी गीता में, जैसे भगवान भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। जिन्होंने गीता पढ़ी है उसको पता होगा कि भगवान ने ऐसे ऐसे अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मेरे अंदर ये है, वरुण है, रुद्र है, सूर्य है, इंद्र है, सब कुछ। तो भगवान अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन को ये विराट रूप क्यों दिया, दर्शन क्यों दिया? क्या इसलिए कि जैसे अर्जुन के मन में भगवान के प्रति गहरा समर्पण भाव और भी दृढ़ हो जाए? क्या इसका ये प्रयोजन था इसलिए दिया? अब अगला प्रश्न ये है, जगदेव जी मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में भी चेतना का विकास होता है कि शरीर छूट जाने के बाद भी क्या साधना चलती रहती है, उसकी चेतना का विकास होता है कि वहीं से आगे मुक्ति हो जाएगी? या फिर दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर में ही चेतना का विकास, शरीर में सूर्य शरीर में साधना होती है। आशीष का प्रश्न है, घर में साधना हेतु निम्न चीजों का क्या महत्व है? आसन कैसा होना चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए, स्थान कैसे? अब ये बलदीप जी का प्रश्न है। जब अपनी थोड़ी मोटी श्रद्धा भक्ति पाव के मुताबिक थोड़ी थोड़ी श्रद्धा साधना करते हैं तो साधना करने की खिच बनी रही, थोड़ी थोड़ी करते रहो तो ठीक है। जब ज्यादा शिविर साधना लाने की कोशिश की जाती है तो उल्टा सरकंदर शौक घट जाता। जब घर होने हाँ तो आश्रम आके साधना करने की खिच रही है, पर इतने आके खिच नहीं रही, ये की कारण है? तो धीरे धीरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मुख्य तो यही था, मृत्यु के समय क्या होता है, बाद में वो कौन प्रश्न है। तो इसमें एक ये वर्ण है ना, वर्ण का प्रश्न पीछे बैठा है कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप क्यों दिखाया? क्या इसलिए कि उसका श्रद्धा विश्वास दृढ़ हो जाए? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान ने इसलिए दर्शन नहीं दिया कि ये मुझ में भक्ति करे, मेरी विश्वास करे। भगवान को कोई जरूरत नहीं है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, जरूरत अर्जुन की है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया इसमें शक नहीं है, क्योंकि वो विराट दर्शन का अधिकारी बन गया था, उसमें इतना अधिकार हो गया था, इतनी दृढ़ता हो गई थी कि उसके जो कुछ संशय थे, कुछ प्रश्न थे, कुछ जिज्ञासाएं थी, जिनकी वो पूरी श्रद्धा होने के बाद भी, पूरा दिमाग लगाने के बाद भी, पूरी अंतर्मुखता होने के बाद भी, वो प्रश्नों का निराकरण नहीं कर पा रहा था। वैसे अर्जुन तो एक निमित्त है, तो नर का अवतार है, तो बहुत सी सारे मानव की जितनी समस्याएं हैं, जितने भी प्रश्न उठ खड़क हो सकते हैं, वो अर्जुन के निमित्त से नर के अवतार के रूप से वहां पर वो प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर वो प्रश्नों की उत्तर चर्चा नहीं करेंगे कि अर्जुन को क्या प्रश्न, लेकिन इतना कहेंगे कि वो विराट दर्शन का अधिकारी कैसे बना। वो सबसे बड़ी बात वो है विशाल योग। आजकल चलता है कहीं ना भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, एक विशाल योग भी है। गीता के पहले अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। उसके बाद ही गीता शुरू हुई है और अपने सीधा ही करना चाहते हैं। संसार में दुख है, विषाद है, तड़प है, भयानक तड़प है, बहुत विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। अर्जुन का दृष्टांत, इतनी भयानक परिस्थिति आ गई कि वो खड़ा भी नहीं रहा। इतना बड़ा शूरवीर योद्धा है और इतना हलचल मची है, इतना व्याकुल हो गया, इतनी तड़प उसके दिमाग में नहीं, प्राणों में भी नहीं, मन शरीर पसीनों पसीने हो रहे, रोंगटे खड़े हैं, जलन हो रही है शरीर में और उसको दिखाई चक्कर आ रहे हैं, क्या करूं? किस लिए कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस वक्त वो प्रश्न इतना घमासान मचा रहा है उसके हृदय में। युद्ध करने के लिए आया था राजा है अर्जुन, राजा का दंड है, राज दंड है, और पापियों को दंड, जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको दंडित करना है। तो अर्जुन कानून है, ऐसे नहीं कि मरने मारने वाली बात नहीं है, वो शासन की ओर से, युधिष्ठिर राजा थे उसको च्युत कर दिया, तो शासन की ओर से दुर्योधन और उसके भाई बंधुओं को वो दंड देने के लिए युद्ध में आया है। कई बार आमने सामने मुकाबला हो जाता है ना, यहाँ तो पुलिस तकड़ी है, दंड तकड़ा है, अपराधी भागते हैं, वहाँ अपराधी इतना प्रबल हो गया है। दुर्योधन कहते हैं मैं नहीं मानता, तुम कर लो जो मर्जी। वो अर्जुन उसको दंड देने के लिए, उसका कर्तव्य है, राजा का धर्म होता है। लेकिन समस्या ये हो गई, अब सामने देखा तो मेरे गुरु भी खड़े हैं इस पार्टी में, उनको कैसे दंड दूं। तो भयानक कोलाहल है, भयभीत हो गया है, क्या करूं। तो फिर इतना परेशान हो गया तो भगवान की शरण में गया कि अब आप ही रास्ता देखो, अच्छा मैं जंगल में चला जाऊं। ऐसे भी कहते हैं ना, जज भी आज लोग बहुत कह देते हैं इस कोर्ट में मेरा रिश्तेदार आया है तो केस को शिफ्ट कर दो, हिम्मत नहीं है सामना करने की, लोग क्या कहेंगे। वो तो दिमागी हलचल होती थोड़ी बहुत, लेकिन अर्जुन तो बहुत भयभीत हुआ है, मैं जंगलों में चला जाऊंगा, ये करूंगा। लेकिन उसने ये कहा, अच्छा भगवान को कहा, अच्छा मैं आपकी शरण हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसे मैं करूँगा। तो भगवान ने ये नहीं कहा भी लड़ो, सीधा नहीं कहा, उसको बहुत युक्ति से प्यार से समझाते गए कि तू आत्मा है, कि तू निष्काम कर्म कर, कि तू इस प्रकार से कर्म कर, करते करते भी उसको फिर भी बना रहा, अरे ये मर जाएंगे, वो हो जाएगा। इतना कुछ होने पर भी मानने के बाद ये, क्योंकि दुर्योधन ने मरना ही था भाई, क्या वो मरता तो मैं पाप का भागी बनूंगा, ये निकल नहीं रहा उसके मन में। तो ऐसी परिस्थितियां जब बने तो भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि विश्व रूप भी वो अर्जुन के लिए वो अनंत व्यापक जो ब्रह्मांड है उसका एक अंश ही दिखाया, वही अंश जो अर्जुन के लिए उपयोगी था, जिससे उसको सारा पता लग जाए वो करने वाला नहीं है, निमित्त मात्र भव शब्द साचिन। तो कराने करने वाला ये लक्ष्य था, विश्व रूप दिखाने का लक्ष्य ये था कि करने वाला कराने वाला मैं हूँ, लेकिन तुझे करना होगा, तू निमित्त बन के करेगा, तू पाप से मुक्त रहेगा। तो श्रद्धा विश्वास दिलाने के लिए नहीं था अपने में, क्योंकि विश्वरूप पढ़ तो रहते हैं, यदि भगवान गीता को ध्यान से पढ़ें तो वो विश्वरूप जो सचमुच उसके आगे भी भगवान की और दर्शन है, और भी आगे बहुत गहरे स्थान है। तो विश्वरूप का एक विराट रूप का एक अंश दिखाया, जिसमें उसमें दिखाया गया कि सब ये कौरव पांडव आदि 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 काल का ग्रास बनते चले जा रहे हैं, ये करते 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 इतना सब कुछ दिखाया गया। तो खैर ये लंबी चर्चा, कहने का भाव हमारा यही है, श्रद्धा हमें पैदा करनी है, विश्वास हमें जुमाना है, साधना हमें करनी है, आगे हमें खुद बढ़ना है, और फिर पूरा जोर लगाते जाएं, और फिर जो कमी रह जाएगी पूरा जोर लगाने के बाद, पूरा समर्पण हो जाने के बाद, पूरी साधना हो जाने के बाद, क्योंकि अपने किए से कभी पूरी साधना नहीं हो पाती, अपने करने से पूरी श्रद्धा नहीं होती, अपने करने से ही परमात्मा से मिलन नहीं होता, लेकिन अपनी ओर से पूरी हद पर पहुंचने पर भगवान को गले लगा। तो हम तो कहते भी तू कर रही, तू तो आता नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे इस प्रकार चलते चले गए। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर चाहे ये वरुण ने पूछा है, ये तकरीबन सब साधकों उनको आना चाहिए कि वो क्यों नहीं आते आजकल। अरे भी हम भी तो कदम उठाए, हम तो सिकड़े रहते हैं, सारा काम तुम ही करो, तो सारा काम उसी ने करना है तो हम क्या रहते, हमारा हमें क्या लाभ होगा। यदि बच्चा कहे मास्टर जी तुम पास कर दो, हम तो पढ़ेंगे नहीं, तो पास होने का मतलब फिर ये हुआ कि वो मूर्ख बना रहेगा। यदि कोई बच्चा चाहे कि बिना पढ़े हमें अध्यापक पास कर दे, तो इस प्रकार के पास होने का मतलब ये होगा वो बच्चा मूर्ख है, उसको पढ़ना आता ही नहीं है। इसी प्रकार यदि भगवान की पूरी भक्ति किए बगैर, साधना किए बगैर, पूरा किए बगैर भगवान का दर्शन हो जाए तो क्या होगा, पागल हो जाएगा, सह नहीं सकेगा, वो तो अनपढ़ रह जाएगा ना। इतना ही है, दोबारा कोशिश कर ले। और बिना साधना किए, बिना अभ्यास किए और भगवान का यदि दर्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा। भगवान कहते साधना कर लो भाई, यदि दर्शन चाहते हो, मैं तो तैयार बैठा हूँ। तो इसी प्रसंग में ये आगे जो प्रश्न है दीपक का है कि आखिरी समय में यदि कोई साधक ध्यान करते करते, आत्मा का ध्यान करते करते शरीर छोड़ दे तो क्या उसको फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो पहली बात ये है, शरीर छोड़ दे या शरीर छूट जाए, दो चीजें हैं, है ना। यदि ध्यान करते करते शरीर छूट गया है तो जैसी स्थिति में, तो शरीर छूटना एक अलग बात है और ध्यान करते करते शरीर छूट गया है तो आगे उसकी बहुत अच्छी गति होगी, इसमें कोई शक नहीं। और यदि कोई इतना उन्नत साधक है कि ध्यान करते करते वो शरीर छोड़ सकता है तो ये इच्छा मृत्यु ये किसी विरले के ही होगी, ये सामान्य स्थिति नहीं है। अच्छा, हम शरीर छोड़ना चाहते हैं, अभी समय नहीं आया, शरीर ठीक ठाक था, अच्छा अभी ध्यान में बैठ गए और शरीर छोड़ दिया तो भी मुक्ति ही है, उसका मनोनाश वासना क्षय हो ही गया है। जिसका भी मन मैला है, शरीर में फंसा हुआ है, वो ध्यान करते करते अपनी मर्जी से शरीर छोड़ ही नहीं सकता, तो ये समझ लेना है। और यदि शरीर छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आगे साधना करता जाएगा। यदि बहुत गहरे ब्रह्मरंध्र से ऐसे उसने शरीर छोड़ा है तो हो सकता है ऊपर के लोकों में जाता जाए, चलता चला जाए और दोबारा नहीं आने की जरूरत हो। और ध्यान करते करते यदि उसका शरीर छूट गया और किसी इंद्रिय छिद्र से उसका प्राण निकले हैं तो ठीक है, ऊपर के लोकों में जाएगा और अगली बार फिर नीचे मेरे शरीर को प्राप्त होगा और फिर उसकी साधना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न भी है कि क्या शरीर छूटने के बाद भी साधना चलती रहती है, चेतना का विकास होता है? तो होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है। जितनी वेग से, जितनी गहराई से स्थूल शरीर में रहते हुए साधना होती है, शरीर छोड़ने के बाद वो वेग नहीं रहता। गाड़ी तो चलती रहती थोड़ा थोड़ा आगे, नहीं तो फिर स्वर्ग नरक का कोई प्रयोजन नहीं। वहां भी कुछ कुछ चेतना का विकास होता है, लेकिन वो ऐसे ही होता है जो वेग हमने मर्त शरीर में साधना का प्राप्त कर लिया और फिर शरीर छूट दिया, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहेगा। हाँ, दोष कर इसके बन जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि यदि कोई शरीर छोड़ते समय अभी पूर्ण मुक्त नहीं है, यहाँ रहते ही पूरा नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर की हदबंदी से ऊपर उठ गया है, कुछ संस्कार हैं मन के अभी शुद्ध हैं, चाहे वासनाएं हैं चाहे शुद्ध ही हैं, तो वो ऊपर के चार लोक हैं। सात लोक हम मानते भू भूवा स्वाह माह जना तपा सत्य। सत्य को सच खंड भी कह देते हैं, ब्रह्मलोक भी कह देते हैं। तो वो व्यक्ति जो स्थूल में, ये स्थूल शरीर की हदबंदी से ऊपर उठ गया है और दशम द्वार का भेदन करके जिसने शरीर छोड़ा है, लेकिन अभी भी पूरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसे रह गई थी, तो वो फिर वो भूर भूवा स्वाह तीन लोकों में जाने की इसको जरूरत नहीं है। अपने वेग के अनुसार वो महाजना तपा किसी लोक में जाएगा या महालोक से फिर वो धीरे धीरे साधना होती जन लोक में, फिर तप लोक में, फिर सत्य लोक में, और फिर वो वहां से मुक्त हो जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि मर्त लोक स्थूल शरीर की हुई साधना थोड़ी बहुत आगे चलती, बहुत धीरे धीरे जाएगा। हो सकता कितने ब्रह्मा जी के साथ ही, ब्रह्मा जी तक वो जब तक ब्रह्मा तब तक बैठा रहे फिर। और यदि मनुष्य शरीर में रहते हुए यहाँ शरीर में रहते हुए ही वो पूर्ण वासना क्षय मोनाश पूरा ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, तो फिर वो उसके प्राण ना ना ये इंद्रिय छिद्रों से जाते हैं, ना उसके प्राण दशम द्वार से बाहर जाते हैं, उसके प्राण शरीर में ही से होते 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 यहीं से वो व्यापक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और ये स्थिति बहुत दुर्लभ, वैसे तो कहते हैं ना ऊपर से निकल गए तो ठीक है, वो ऊपर से भी नहीं निकलते। तत्रैव समवलीयन्ते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का वो शरीर छोड़ के ही नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है, तो हाँ स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जाएगा, कारण में जाएगा, महाकारण में जाएगा, करते 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 उसके शरीर के अंदर ही ब्रह्मलोक आ जाएगा, यहीं पर उसके लिए है भी, यहाँ भी सचखंड है, यहाँ भी ब्रह्मलोक है, तो यहाँ रहते हुए ही वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो कहने का भाव है यात्रा चलती है सूर्य शरीर छोड़ने के बाद भी, लेकिन वो कर्मानुसार ही होती है, सहजी होती है। तो अच्छा यही है कि जब तक ये शरीर मिला हुआ है तभी तक पूरा जोर लगा लें, पूरा जोर लगा लें, पूरी साधना कर लें, सबसे श्रेष्ठ यही बात है। और आगे फिर ये प्रश्न है, तो कल वाला प्रश्न था कि जो आखिरी बात है वो किस प्रकार से शरीर छोड़ा जाए, शरीर छोड़ने का मतलब क्या होता है, शरीर छोड़ने के समय क्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है। तो बहुत सारे प्रश्न, बड़े बड़े चर्चाएं करें तो कई दिन भी लग जाए, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म सी चर्चा करें। पहली बात ये है, शरीर का छूटना, जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन रहता है, यानी कि शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, उनकी बात नहीं करते हैं, जो परमात्मा में मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि शरीर से पहले भी मैं था और शरीर के बाद भी मैं रहूँगा, उनकी बात करते हैं। तो ये जो शरीर का छूटना है या फिर जन्म लेना है, जन्म और मरण, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, किसी महायोगी के हाथ की बात है। पहले कह दिया ना दीपक के प्रश्न में, इच्छा मृत्यु बहुत दुर्लभ स्थिति है, इच्छा मृत्यु के प्रसंग में फिर ये कह दें, कोई कहता है जी उन्होंने कह दिया था कि फलाने दिन हमारा शरीर छूट गया, छूट गया, ये इसका नाम इच्छा मृत्यु नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको शरीर छूटने का पहले सूचना नहीं मिलती, बहुत बड़ी घटना है, बड़ी नींद आने से पहले पता लगता है नींद आ रही है, आती कि नहीं, नींद छोटी सी बाहर से तुरंत से मटके शरीर के अंदर जाती, आंख बारी हो रही भी मेरी तो मैं तो नींद आ रही है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हिस्सा ऐसा गड़बड़ कर रहा है, नींद नींद आने का पता लग जाता है, तो ये आंख ही एक छोटी सी भारी हुई है, सारे शरीर में हलचल मच रही है, रोम रोम से प्राण निकल कर अब वो जाएंगे बाहर जाएंगे ऊपर उठेंगे तो वो क्यों नहीं पता लगेगा, लगता है लेकिन जीने की इच्छा, शरीर में वो इतना, परिवारों में इतना, वो पूरा ध्यान ही नहीं, मरे नहीं छूट जाए, नहीं आस बनी रहती है कि अभी भी बच जाएंगे, आखिर तक भी अभी भी शायद बच जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो डॉक्टर की दवाई काम कर ले, शायद ऑक्सीजन का सिलेंडर काम कर ले, शायद कुछ और चमत्कार हो जाए, शायद अभी भी शरीर ना छूटे, शायद अभी भी शरीर ना छूटे, अगर छूट जाता तो इस कारण नहीं पता लगता कि कब शरीर जा, क्योंकि जाने की इच्छा नहीं है। आज थोड़ा सा भी अंतर्मुख है वो उसको पता लगेगा, हाँ भी अब शरीर जाने का समय आ रहा है, आ रहा है। वो हमारे कहने का उसने कह दिया था कि फलाने नरम मेरा टाइम आ गया, उसको पता लग गया। तो भी सबको ही पता लगता है, इच्छा मृत्यु बिल्कुल अलग चीज है। इच्छा मृत्यु का मतलब है जैसे स्वस्थ शरीर भी अब शरीर छोड़ना है, अच्छा जी हाँ फलाने दिन छोड़ देंगे, इतने बजे छोड़ देंगे, और दिन छोड़ दिया उन्होंने, इतने बजे छोड़ दिया, इसका नाम है इच्छा मृत्यु। इसके भी बढ़कर अभी वो जटाने वाले बैठे ना, हमने उनके बारे में सुना, नगन साधु कहते जी उन्होंने कहा एकादशी वाले दिन शरीर छोड़ेंगे। तो एकादशी आगे लोग इकट्ठे हो गए, कहते कौन सी एकादशी, पता नहीं क्या रहते किस कौन सी एकादशी, अरे नहीं इस काशी नहीं, वो तो दूसरी है निर्माण ही काशी, उस दिन शरीर हमने छोड़ना है, अभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो कहते अभी नहीं, इस बार नहीं अगली बार ही छोड़ेंगे, भक्त इकट्ठे हुए थे तो ऐसी बात नहीं, वो चलाकी कर रहे थे। तो अगली बार उन्होंने छोड़ ही दिया। तो ये होता है इच्छा मृत्यु। भीष्म ने कहा अभी उत्तरायण नहीं आया, उत्तरायण आएगा तो छोड़ेंगे। अपने डेरे में मेवापुरी जी हुए हैं, कहते जी हरिद्वार जाके शरीर छोड़ेंगे, अब 100 साल की ऊपर आयु हो गई है, कहते जी वहाँ तो गाड़ियां भी जाएगी हरिद्वार पैदल समाता, इतने 250 मील है पैदल कैसे जाओगे, कहीं रास्ते में छूट जाए, कहते इतना भी नहीं पता कब शरीर छोड़ना कहाँ शरीर छोड़ना, तो फकीरी का एक ही थी। जब समय आ गया कमली बात ठीक है अभी अब शरीर छोड़ने के लिए चलो तैयारी करो, तो सब करके तेरे को ऐसे छोड़ के पैदल यात्रा चलो हरिद्वार। हरिद्वार कुंभ का मेला था और वहाँ पर सब आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं बताएंगे जरूर, संतों को भी पता लग गया कि अभी शरीर छोड़ना। फिर उन्होंने करते करते कुंभ मेला काफी समाप्त ऐसा अप्रैल का महीना जैसे हो गया, मार्च समाप्ति हो रही कुंभ की, अच्छा जी ध्यान से कर लो तैयारी अमुक दिन जाएंगे, वहाँ गंगा की धारा में जाएंगे, अमुक दिन इस समय शरीर छोड़ने के लिए जाएंगे। अब समय आ गया और चले अपने आश्रम से जहाँ रुके हुए थे और साथ में कमली वाले और सारे, चलो जी गंगा किनारे पहुँच गए, अब जा रहे हैं गंगा किनारे। उन्होंने विलक्षण ढंग से शरीर छोड़ा, गंगा के अंदर जाकर उपदेश दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ, यहाँ तक कमली वाले कहने लगे कि आपके वियोग में आप जब चले जाएंगे तो मेरा रहना, मैं कैसे रहूँगा, मैं नहीं रह सकता। कहते यदि इतना ही विरक्त हो तो चलो आप भी चलो, आप मेरे सम्मुख मुंह करके ध्यान करो, हम ऐसे लेकिन कहते अभी रहने का, अभी आपने पीछे बहुत कार्य करना है, बहुत साधकों का उद्धार करना है, तो आप रह जाओ। तो वो ये जान सकते थे, जान सकते थे आप यदि यही रह जाओ। तो फिर वो गंगा के अंदर गए और किस प्रकार से शरीर छोड़ा, उन्होंने कुंभक किया, एक महायोग की साधना, एक होता है भाव योग, इधर से शरीर छूटता गया ऊपर चले गए, उन्होंने पूर्ण कुंभक किया और फिर गंगा के भीतर बैठकर पूरा कुंभ करते शरीर को भर के और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये है इच्छा मृत्यु, ये दुर्लभ स्थिति। तो और बहुत से दृष्टांत है और कथा, तो यदि इनकी और कहें तो 3 दिन के बाद फिर दर्शन दिए। तो ये जीवनी जो कमली वालों की छपी हुई है, जो पूर्ण विवरण चाहे तो उसमें से पढ़ सकते हैं। तो जब शरीर छोड़ दिया, जब मर्जी धारण कर लिया, वो तो शरीर छूट गया, फिर सूक्ष्म शरीर में दिव्य शरीर में कोई प्रयोजन रह गया था, कारण रह गया था, दोबारा फिर दर्शन दिए, चलो दुकान में गए कपड़ा खरीदा और लिया, कहते अब हम चलते हैं। तो ये इच्छा मृत्यु है, ये कोई महायोगी कर सकता है। तो कहने का भाव यही है, शरीर का छोड़ना एक व्यक्ति के बस की बात है। क्या होता है, कहने का भाव ये है कि शरीर के छूटता किस प्रकार से, परमात्मा की कृपा होती है। आखिरी समय में तो परमेश्वरी शक्ति है, कुंडलनी है, वो शरीर के अंदर जागती है, आने जाने अनजाने, और वो जो मूलाधार से चेतना उठती है वो सूरत को अंदर खींच के, क्योंकि बाहर से शरीर तो नाकाम जैसा हो गया है, नकारा जैसा हो गया है, अब कोई हार्ट फेल हो गया, कोई ये हो गया है? या कोई बूढ़ा शरीर हो गया, अब इंद्रिय छिद्रों से बाहर के साथ संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है, तो चेतना जैसे अंदर जाती है, जैसे जैसे अंदर जाती है, अंदर जाएगी तो कोमा में पड़े रहेंगे, चाहे बेहोश पड़े रहेंगे, लेकिन शरीर से बाहर निकलने वाली जो बात होती है, जब चेतना अंदर गई तो अंदर प्रति परमेश्वरी है, उसके साथ सूरत का मेल होता है, और फिर वो शक्ति परमेश्वर की कृपा इसको धीरे धीरे ऊपर उठाकर ले जाती है। लेकिन हमारे कर्मानुसार, हमारी वासनानुसार, हमारी इच्छा के अनुसार ये शरीर छूट जाता है, जैसा हम चाहेंगे, जिस लोक में जाना चाहेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे, हमारी वासना जैसे संस्कार है उसके अनुसार फिर अगले लोक में जाना होगा। तो ये देख लेना मृत्यु के समय क्या होता है। पहली बात, अंदर तो शक्ति जागी, मूलाधार से चेतना ऊपर उठी, इधर से फिर प्राण सुन होने शुरू हो गए, फिर इधर से सुन होना शुरू हो गया, फिर इधर पीछे पीछे हार से ऊपर, ये जो एक कला है अंत क्षेत्र पिंड और ब्रह्मांड की संधि, तो यहाँ प्राय घड़घड़ जैसी होनी शुरू हो जाती, घंटी खड़कती है, तो जिसका जितना वो कंठ क्षेत्र खुल जाए उसके अनुसार ही उसका शरीर छूटकर किसी भी लोक को जाएगा। जिसका ये कंठ क्षेत्र पहले ही पूरा खुला हुआ है साधना के द्वारा, पूरा खुला पीछे तक, ये गहरे नीचे तक, तो यहाँ से प्राण जाएंगे और मस्तक के अंदर वो चेतना प्रवेश, सीधी मस्तक के अंदर चेतना प्रवेश होगी और दशन द्वार का भेदन करके वो फिर वो निकल जाएगा। लेकिन इसका पूरा नहीं खुला हुआ है, आखिरी समय पर काफी कुछ खुलता है, लेकिन फिर भी नहीं पूरा खुला। क्यों नहीं खुला आखिरी टाइम पर, जब पहले नहीं खुला? प्रश्न है, ये जो नेसोस है ऐसे ऐसे टेढ़ा जैसा है ना, तो इधर सारे इंद्रिय छिद्र हैं, इधर इधर उसमें इधर कान है, इधर आंखें सामने हैं, ऐसे ऐसे सारे हैं, तो पूरा ऐसे ऊपर को नहीं खुला है, इंद्रिय छिद्रों से मुक्त नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टेढ़ा इधर उधर है, तो वो इस प्रकार होने के शक्ति तो ऊपर उठी है। अब किसी का ये मुंह वाला ज्यादा खुला है, इधर प्राणों का आना जाना ज्यादा है, किसी का नाक वाला, किसी का आंखों वाला, किसी का कान वाला, यही सात छिद्र हैं। तो जिसका प्राणों का प्रवाह इन सात छिद्रों में से जिस छिद्र की ओर ज्यादा होता है तो शक्ति तो उठी है, उस छिद्र की ओर प्राणों का प्रवाह होगा और वहां से शरीर छूट जाएगा। शरीर तो छूट नहीं है, और जो इधर क्या है उसको रूप की आंखों ज्यादा कर इधर सुनने सुनने का बहुत शौक है, ये सुना वो सुना, इधर निंदा कर दी, ये किसी का इधर प्राणों का प्रवाह ज्यादा है, किसी का मुंह का ज्यादा है, तो खाया पिया ये कर वो करिए, ये खुला हुआ है, ज्यादा खुला हुआ है, तो ये रस जिस विषय में ज्यादा आकर्षण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच ही विषय हैं, शब्द स्पर्श सारा, रूप रस गंध, ये पांच, तो जिसका जिस विषय में ज्यादा आकर्षण है उसका वो इंद्रिय छिद्र ज्यादा खुला होगा, और उसका फिर बाहर शरीर से छूटना भी उसी इंद्रिय छिद्र से होगा, और उसके अनुसार ही उसका फिर अगला जन्म हो जाएगा। हाँ, ये इतना आसान तो नहीं है, ये भी आंख के भी इधर से ऊपर से हुआ, इधर से हुआ, इधर से हुआ, नाक के भी इधर कोने से हुआ, इधर से नीचे से हुआ, भी तो बहुत बहुत कॉम्बिनेशन है, लेकिन इतना मोटा मोटा, जैसे इंद्रिय छिद्र से इसके प्राण बाहर निकले हैं, ये स्थूल पदार्थ खाने पीने, इधर थोड़ा सा गति है, गंध है, थोड़ा और थोड़ा सुनना चाहे, इधर रूप और शब्द, अच्छी अच्छी बातों का, वो शास्त्र की बात, वो सुन, तो शायद और गहरे से और ऊपर से उठे, अंदर से और गहरे से, ये कान वाला शास्त्र की बातें सुनेगा तो इंद्र को खुलेगा, यदि निंदा की बात सुनता है तो शायद यही ज्यादा खुलेगा, यदि खाने पीने की बातें की चर्चा सुनता है, सुनता तो इधर से खुलेगा यही मुंह वाला, यदि अच्छी अच्छी बातें सुंदर सुंदर शास्त्रीय इंद्रिय बातें सुनता है तो अंदर की ओर वो खुलेगा ना कान का, तो बात अंदर की ओर कितना खुला हुआ है किसका चिंद्र, तो उसके अनुसार फिर वो क्या होता है, इधर से चेतना ऊपर उठी, जब कंठ में घड़घड़ होती है चेतना अंदर जाती है तो एक विस्मृति जैसी, शरीर बाहर की, शरीर की होश नहीं है, अब भगवती परमेश्वरी है उसका वेग तो ऊपर को ही है, तो यहाँ से वो शिव का शक्ति के साथ मिलन होता है और पूरी शक्ति जागृत होती है, बाहर से चाहे विस्मृति भी है और उस समय उसके पुराने सब संस्कार जागृत होते हैं, जो भी वासना प्रबल होगी वो जागृत होगी, गहरे दबे हुए आखिरी समय में सोचेंगे भगवान का नाम ना, वो आखिरी वाली बात नहीं होती, जो कुछ जीवन भर हमने किया था सम टोटल जितने संस्कार, जो संस्कार प्रबल थे, जैसे वो बही खाता करते हैं ना मुनि, ये दिन दिन का करते, ये घाटा बाला घाटा बाला घाटा करते करते आखिर में इतना मुनाफा हो गया, आखिर में एक लाइन ही हो जाता है, तो जनमन से लेकर आखिरी श्वास तक जो कुछ उसने किया उसका लेखा जोखा, तो आखिरी समय में किसी को पुराने प्रकट भी हो जाते हैं, ये किया वो किया, फिर उसके अनुसार रिजल्टेंट जो है वो किस और संस्कार थे, वो अनजाने ही वो उधर से प्राण उसके निकल जाते हैं, पहले चाहे चेतना बनी भी हुई हो लेकिन जब वो इधर से कहीं से भी प्राण निकलेंगे तो थोड़ी देर के लिए बेहोशी आएगी अंदर, यानी बाहर से नहीं भी पता लगेगा, और जब शरीर छूट जाता है उसके अनुसार फिर उन लोगों में उसकी गति होती है, तो ये आखिरी समय में इस प्रकार से होता है, कोई कहता नहीं वो तो चलते करते बोलते चलते चला गया, वही व्यक्ति बोलते चलते शरीर किसी का नहीं छूटता है, बोल रहा था फिर अंदर चला गया, और फिर उसके बाद वो संस्कार लगे और फिर अनजाने उसका शरीर छूट गया, कोई ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसकी बात हम पहले कर चुके हैं, जब वो चेतना अंदर जगी है जिसके साथ वो इंद्रिय चिंद्र शुद्ध हो चुके हैं और फिर वो शिव के साथ मिलन होता है, फिर वो प्रकाश, उसको पता है अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो उत्तरायण पथ है, प्रकाश का पथ है, लेकिन जिसका भी शरीर किसी भी इंद्रिय छिद्र से बाहर जाता है वो अंधकार का पथ है, पहले पहले कितना भी पता लगाते हैं लेकिन आखिरी समय थोड़ी, जैसे सामान्य सा देखो जब नींद आती है, अभी जाग रहे हैं बात कर रहे हैं और नींद आई, जब नींद आती है तो बेहोशी होती है, नींद के क्षण में कोई होश नहीं होती है, तो मृत्यु के क्षण में भी होश नहीं होती है, होश होगी किसकी, इस महायोगी, तो भगवान का पूरा भक्त है, तो ये मृत्यु के समय में होता है, उसकी छोड़ दीजिएगा, लेकिन जितना जितना कोई संस्कार है जितना है संस्कार, यदि पशु, पशु का मतलब क्या होता है, तो पशु का मतलब जड़, इसमें चेतना है ही नहीं, है ना, पशु को दिमाग है ही नहीं, तो जिसका दिमाग है ही नहीं वही पशु बन सकेगा, तो अभी तो सोचते हैं मनुष्य बहुत उन्नत है, बहुत विचारशील है ना, समझ में आता है ना, युक्ति है, लॉजिक है, और ये ठीक है बुरे कर्म किए हैं तो उसका दंड उसको मिलेगा, नरक में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पशु बनने का मतलब है अब दिमाग खत्म हो गया, सोच विचार है ही नहीं, आजकल लोग बहुत अच्छे विचार, या उल्टा सोचें, उल्टा सोचेगा तो नरक में जाएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो पशु वाली बात छोड़ दीजिएगा, पशु जैसा हो सकता है, अभी बीच में निकल जाएगा,
पशु जैसा हो सकता है इसकी चर्चा न करें, क्योंकि ये बहुत भ्रांतियां हैं। वो खोता बन गया, वो बैल बन गया, कहानियां हैं। पशु जैसा हो सकता है ये मानते हैं, मनुष्य में भी कोई सांप जैसा, कोई चूहे जैसा, कोई बैल जैसा, कोई सूक्ष्म लोक है, वहाँ बहुत कुछ है, है? पशु जैसा अभी कहते हैं पशु जैसे ही है, तो वो तो मान लेते हैं। पशु का मतलब दिमाग बिल्कुल है ही नहीं, उसकी बात छोड़ दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है, जब तक ने क्या रखा है भाई, मरना सीखो। इसके लिए सीधी सी बात है, मरने से डरे नहीं। हाँ मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, डरे नहीं। इसका मतलब ये है कि इतना ही जीवन नहीं है, कोठियां मकान जायदाद ये छूट जाएंगे तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं सोचे। ये पहली बात है। तो पहले हम कह चुके थे जो आस्तिक पुरुष हैं, जो सोचते हैं मनते मानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो जीवन है, अस्तित्व है। अब भारत छोड़ दिया तो अमेरिका में चले जाएंगे, वहां कोई जान पहचान ही नहीं है। तो ये छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया तो पता है स्वर्ग लोक में, कभी ब्रह्म लोक में, और यदि फिर आ गए तो फिर मर्त्य लोक में आ जाएंगे। तो इसमें क्या मुश्किल वाली बात है? शरीर पुराना हो गया, रोगी हो गया, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसा रोगी वृद्ध शरीर यदि छूट गया तो इसमें क्या अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है, अगले जन्म में नया शरीर मिलेगा, है ना? अनु को देखता नहीं कि मम्मी को देखते जो भी याद आ गया। एक वो माई थी, उसका घर वाला गुम हो गया, तो थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, तो साथ में एक उसकी सहेली भी चली गई। अच्छा, सिपाही कहता है पति गुम हो गया तो उसको खोजो, तो रिपोर्ट लिखाने लगे। कहते जी खुलिया बताओ। कहते 6 फुट लंबा कद, चौड़ी छाती, गोरा रंग, आंखें ऐसे गुलाब की तरह और पूरा। तो साथे को तू ये क्या बोल रही है, वो तो ऐसे 5 फुट का था, काला सा था, टेढ़ा मेढ़ा जैसे था, तू क्या खुलिया बता रही है? वो कहने चुप कर, बोलते बड़े चंगा ही लबड़ गए। तो अपना मतलब है शरीर रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया, हाय करता, चला नहीं जाता, कुपड़ा हो गया, और छूट गया तो छूट ले, अब नया होलिया लगाओ। जो पुलिस है भगवान की पुलिस है, अच्छा ही शरीर देगी। क्यों पिछले की चिंता करते हो, भाई मर गए, वही चाहिए, वही नहीं चाहिए। पुराना शरीर जो बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, हाय करता है, नहीं अब धारणा करो मैं दिव्य शरीर, ये शरीर भगवान से वही प्रार्थना है, वही मिले, भगवान से प्रार्थना करो नया शरीर मिले, और क्या वही रोगी शरीर हो, है? तो डरे नहीं मृत्यु के समय, पुराने की खोज नहीं करें, पुराने के पीछे खोज नहीं करनी है। तो ये धारणा पूरी कर लें कि मृत्यु के बाद ये शरीर छूट जाएगा, खराब शरीर छूट जाएगा, तो भगवान से वो नया ही देंगे भाई, नया ढूंढ के देंगे, बढ़िया देंगे। लेकिन यदि हम चाहेंगे तो ये बहुत जरूरी है। यदि पहले आए आए वही हो तो फिर वो कोई चक्कर चलता रहेगा। दूसरी बात, मतलब भगवान की कृपा समझे, मृत्यु शरीर छूट रहा है, छूट रोगी शरीर है, छोड़ दें उसको, कोई चिंता नहीं, मतलब छूट रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा, सारी उम्र शुभ कर्म करें, धन मकान जमीन जायदादों के लिए पाप कर्म नहीं करें। यदि धन मकान के लिए पाप कर्म करेंगे तो धन मकान तो यही रह जाने हैं, पाप कर्म ही साथ में जाएंगे, पाप कर्म जाएंगे कभी इधर से कभी उधर से, शरीर छूटेगा दोबारा, फिर वही चक्कर नरक स्वर्ग का। तो शुभ कर्म करें, इन चीजों के पीछे नहीं पड़ें, जप करें, ध्यान करें। ये कंठ चक्र पहले ही खोल लें भाई, तभी कहते हैं ना श्वास भरते हुए भी आवाज करो, श्वास छोड़ते हुए भी आवाज करो, कहते हैं ना, छोड़ते हुए तो घराड़े सब मारते हैं, बाहर छोड़ते हुए श्वास
ये बाहर की ओर तो गला खुलता ही खुलता है, श्वास अंदर खींचते हुए भी, अंदर श्वास भरते हुए भी, तो यदि हम गर्जना कर सकें तो वो अंदर की ओर खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये श्वास की क्रियाएं करवाते हैं, ये बहुत जरूरी है, भरते हुए भी करें, खूब करें। और जब आखिरी समय आ जाए उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस समय ध्यान ये रखना है, आ ही गया तो खाने पे, ये तो छूटता तो छूट गए, हमारी मर्जी से नहीं छूटेगा, ये पक्का रखें। हे रब्बा शरीर चके ले जा, नहीं ये बिल्कुल गलत, अब तंग आ गए, दुखी आ गए, अब तो शरीर छूट ही जाए, ये महामूर्खता है। हमारी मर्जी से थोड़ो बात करनी है, यदि हमारी मर्जी से हो जाए मतलब छूट जाए तो शरीर तो भगवान की कृपा है भाई, शरीर का छूटना भी भगवान की कृपा है, चाहे रोगी शरीर हो चाहे कैसा भी शरीर हो, जब तक शरीर मिला हुआ है तब तक खूब डट के साधना कर ले, तब तक खूब डट के सेवा कर ले, भजन कर ले, कमाई कर ले, यानी कि शरीर छूट जाए। हाँ इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि रोगी शरीर हो गया है, दुखी शरीर हो गया है, हे प्रभु अब मुझे भजन करने की ताकत तो दे। चलो कोई बात नहीं, खाने की नहीं ज्यादा खा सकते, ज्यादा नहीं चल सकते, ज्यादा उधर उधर भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये शरीर है मुझे भजन करने की शक्ति पूरी हो। शरीर रोगी हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, तो शरीर में वैराग्य हो, विषयों से वैराग्य हो जाए, ये तो ठीक है, लेकिन शरीर छूट जाए, हे प्रभु ये बिल्कुल गलत धारणा है। शरीर छोड़ने का भी शरीर छूट जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ प्रार्थना करें, जब तक शरीर है उसका वैराग्य, रोग से वैराग्य पैदा कर ले, फंसना नहीं, मैं शरीर हूँ, शरीर से लेकर ये वो ऐसा नहीं। तो ये करते करते फिर भी यदि लगे कि अब शरीर छूटने वाला है तो वैराग्य धारण करें, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं करें। वैराग्य का मतलब खाने पीने का संकोच करें, इधर उधर भागने दौड़ने का संकोच करें, परिवारों में फंसे उधर फंसे, उधर से समेटे अपने मन को, मन को विषयों से समेटे, ना कि ये प्रार्थना करें हे रब्बा शरीर छूट जाए, मन को विषयों से समेटे। हाँ आखिरी तरह हमारे स्थूल पदार्थ कम कर दें, क्योंकि स्थूल पदार्थ शरीर में जड़ता पैदा करते हैं, इधर मल संचित करते हैं, ये जो नीचे शक्ति का केंद्र है उसमें आवरण पैदा करते हैं। तो हल्का आहार लें, जो पच जाए वो आहार लें, लिक्विड ले लें, चुबाने वाली चीज, ठोस चीजें, आप बूढ़े हो रहे भी ज्यादा घी और वो वाला ताकत बन जाए, वो ताकत वो तो ताकत और कम हो जाएगी, तो ये धारणा, क्योंकि शरीर हमारी मर्जी से नहीं, खुराक कम कर देंगे तो शरीर जल्दी छूट जाएगा, ये भी डरने वाली बात नहीं है, खुराक कम कर देंगे तो शरीर ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा, उसमें प्राणों में ज्यादा ताकत आ जाएगी। तो खुराक हल्की लेते जाएं, हल्की लेते जाएं, अन्न छोड़ दें कोई बात नहीं है, लिक्विड लेते जाएं। फिर जब बिल्कुल ही पक्का निर्णय हो गया कि अब शरीर छूटने वाला है, तो जैनियों में एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है और पुराणों में भी ये परंपरा सदा से है, और बहुत से संत ऋषि ऐसे शरीर छोड़ते हैं, आखिरी समय पे केवल पानी बना गए, बहुत अच्छी साधना। यदि सचमुच किसी को निर्णय हो जाए तो वो लिक्विड पर आ जाए, शरीर तो तभी छूटेगा जब समय आएगा, यदि शरीर छूटने का समय नहीं आया है तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हाँ ये है कि पानी भी छोड़ दें तो जल्दी शरीर छूट जाएगा, वो उनके लिए है जो इच्छा मृत्यु चाहते हैं पूरा, तो पानी को रहते चले जाएंगे, शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। अभी लगता है कि अभी शरीर नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा आहार भी लेना शुरू हो जाए, इस मिनट से शरीर निरोगी तो हो जाएगा, तो आहार सूक्ष्म करते जाएं। और जब शरीर छोड़ने का भी समय आ गया है तो नीचे को जो वेग था स्थूल आहार खाने के कारण, तो नीचे को प्राणों का वेग था वो बंद हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, और वे क्या हो जाएगा, और ऊपर से जोर से जितना ऊपर को उठने शुरू हो जाएगी, और जितना नीचे से प्राण ऊपर को उठेंगे, और ये भी यदि थोड़ा बहुत खुल गया बात, तो थोड़ा बहुत खुला है तो ध्यान करें, जब करें, परंपराएं हैं, जैसे आप वो जोत दिखाया करते हैं
छोटा सा दिया जलाने से बात नहीं बनने वाली, पूरा प्रकाश हो, इसके लिए सूर्य साधना बहुत निरंतर करते चले जाएं कि ये खुल ही जाए, इसे श्वास के साथ ये गला खोलते चले जाएं और करते 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 बस भगवान की शरण हो जाए, चेतना को उठेगी, सब ओर से सब ओर दे पूर्ण, मेरे बाद क्या होगा भूल जाए। और यदि इस प्रकार से हो गया, कोई शब्द स्पर्श रूप स्पर्श विषयों में आसक्ति नहीं है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आखिरी समय में उसकी चेतना मस्तक के अंदर प्रवेश कर जाएगी और हो सकता है दशम द्वार से उसके प्राण निकल जाए और फिर वो मुक्त है, कर्म मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो समय हो भी गया है ना? हमारा ख्याल है काफी प्रश्नों के उत्तर आ भी गए हैं। ये जो एक छोटा सा प्रश्न है, घर में रहते हुए आसन, तो ठीक है आसनों आदि का महत्व है, दिशा का महत्व है, स्थान का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा आसन तो ये शरीर ही है। शरीर को इस ढंग से बैठाएं, क्योंकि ये सब ये एक बहुत सी आजकल बहुत कहते हैं ऐसा आसन होना चाहिए, कंबल का आसन होना चाहिए, कुशा का आसन होना चाहिए, वो आसन होना चाहिए, मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, स्थान ये दक्ष पूर्व पश्चिम आदि जो है इस ढंग से है। ये चीजें हैं, यदि हो सकती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत 100 में से 1-2% 5% ही हम इनको मानते देखें, हो गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना होने से ही यदि कहें कि हमारा ध्यान चल जाएगा, नहीं है। तो आसन सबसे बढ़िया क्या है, आसन दिशा और स्थान, ये तीन चीजें हैं इसमें। तो बाहर से भी ठीक रखें, लेकिन सबसे बड़ा आसन ये शरीर होता है। शरीर को शीतल करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं, शरीर के अंदर चेतना ले जाएं। दिशा क्या होती है, ये आंखें पूर्व, ये पश्चिम, ये नीचे दक्षिण, ये उत्तर, ये ऊपर का है, तो दिशा क्या है, अंदर की ओर, पूर्व से अंदर। बाहर का जब पूर्व होता है वो शरीर के अंदर उल्टा हो जाता है, तो पीछे की ओर ध्यान करें, नीचे की ओर ध्यान करें शरीर के अंदर, और ऊपर की ओर ध्यान करें। और स्थान क्या है, ये आसन और स्थान एक ही बात मान लीजिए, स्थान क्या है, जहां भी बैठ के मन लग जाए, सब चलते फिरते सोते बैठे सब जगह का सारे स्थानों में परमात्मा का ध्यान, कहीं मानसिक हो जाए, कहीं ऊंचे बोल के हो जाए, कहीं कीर्तन करते हुए हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, यदि इनका स्थान आसन दिशा बाहरी चीजें हैं, यदि इनका महत्व थोड़ा बहुत है उपयोग कर लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असली क्या है, शरीर के अंदर आपने चेतना को ले जाना है। तो ये जो आखिर का प्रश्न था कि घर में बैठते रहते तो आश्रम की इच्छा होती, आश्रम होता है तो दोनों बार बार करते चले जाते, तो सीधा साधा होता है। हाँ ठीक है, अभी आश्रम में आए और थोड़ी देर रहें और फिर लगता है कि अभी घर में जाना तो घर में चले जाएं, और जब घर में करते करते वैराग्य हो जाए तो आश्रम में आ जाए, बारी बारी करते जाएंगे ऐसा 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 ही होना चाहिए। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग जाते पहाड़ों में जाते हैं, बड़े ये तो छोटी बात है, बड़े बड़े संत भी पहाड़ों में जाते हैं, फिर कहते हैं जब लोक कल्याण के लिए हम नीचे आएंगे। लोक कल्याण करते करते कहते तंग आ गए, चलो पहाड़ों में। तो लार्ज स्केल पर वो करते हैं, लेकिन है क्या, जैसे किसी ने तैरना सीखना हो, है ना, यदि तैरना सीखना हो तो शुरुआत कहाँ करेगा, थोड़े पानी में ही करेगा ना, लेकिन थोड़े पानी में कहाँ तैरना सीखना आएगा, चलो गहरे पानी में, और गहरे पानी में गुड़गुड़ हो रहा है चलो कम पानी में। तो बारी ठीक है, बारी बारी ऐसी ही, ये मनुष्य का स्वभाव है, और जब तैरना आ गया है तो चाहे गहरा पानी है चाहे थोड़ा पानी, तैरना आ गया तो आ गया, किसी को बचा लेंगे पकड़ लेंगे। तो बीच बीच में सत्संग, और फिर सत्संग कितना किया उसकी परीक्षा, घर में सांप और नेवले की लड़ाई सुनी है, नेवले और सांप की लड़ाई होती है। तो सांप बहुत तकड़ा है मानो, तो नेवला लड़ता लड़ता हार गया, तो नेवला फिर कहता है चलो अब लड़ाई बंद करो, जाके जंगल में जाके बूटी खाता है, होती है वो खा लेता है, फिर तकड़ा होकर फिर सांप से मुकाबला करता है।
फिर यदि सांप को मार दिया तो मार दिया, नहीं तो तकड़ा, कहते कोई बात नहीं आता हूँ फिर वो बूटी खाता है, फिर आके मुकाबला करता है, करते 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 आखिर सांप को मार ही देता है। तो अपने भी आश्रम में आके बूटी खाए और ग्रस्त में जाकर मुकाबला कर रहे। तो ग्रस्त में रहते हुए भी भजन हो जाए और आश्रम में रहते हुए भजन हो, सब स्थानों में, तो धीरे धीरे ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इतना कह के समाप्त करते हैं आज का प्रसंग।
Shanti, Shanti, Shanti.